यशाया अध्याय 14 पद 1। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इसराइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। अब यशाया प्रभु के राज के युग की भविष्यवाणी दे रहा है, जब इसराइल का पुनरुद्धार होगा और वो संसार में सर्वोपरि होगा। यशाया अध्याय 14 पद 2 से लेकर 5 तक। और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इसराइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएंगे, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है। स्मरण कीजिए कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में एक स्वर्ग दूत आकाश में उड़ता हुआ घोषणा करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 8। गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, गिर पड़ा। वो बाबुल के पतन की घोषणा कर रहा है। यहोवा ने दुष्टों के सोटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है। यशाया अध्याय 14 पद 6 से लेकर 8 तक। जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे, अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वो चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। सनोवर और लबनोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पेड़ों को भी फलवंत होने का अवसर प्राप्त होगा। अब हम क्रूर व्यक्ति या पापी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी देखेंगे। वो विनाश का पुत्र है, उसमें शैतान की शक्ति निहित है। यशाया अध्याय 14 पद 9 से लेकर 11 तक। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वो तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब प्रमुख जनों को जगाता है, और वो जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी नाई निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। जिस व्यक्ति को संसार श्रद्धा से देखता है, नरक में उसका अभिनंदन देखने लायक ही होगा, क्योंकि उसके अधीनस्थ राजा वहां होंगे और खड़े होकर उसे बड़ी खरी खोटी सुनाएंगे। अब भविष्यवाणी पशु से हटकर पशु में निहित शक्ति की ओर जाती है, अथवा मसी विरोधी विहित शैतान की ओर। यशाया अध्याय 14 पद 12 से लेकर 14 तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। शैतान की ये पांच लालसाएं मैं करूंगा, यही जगत में पाप का आरंभ था, ये परमेश्वर राज्य के विरुद्ध विद्रोह था। पाप की उत्पत्ति परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध शैतान की इच्छा के कारण हुई। एहेस्केल की पुस्तक में शैतान के विषय में कहा गया है कि एक समय वो अभिषक्त करूब था। इब्रानी भाषा में काम लिया गया करूब शब्द बहुवचन में है, अर्थात स्वर्ग में अनेक सम्मानित स्वर्गदूत है। शैतान भी कभी उनमें से एक था। यहां रोचक बात तो यह है कि करूब परमेश्वर की पवित्रता की चौकीदारी करते थे। ये भी हो सकता है कि वो करूबों का प्रधान था। एहेस्केल अध्याय 28 में शैतान की पवित्र अवस्था का वर्णन है। एहेस्केल 28 अध्याय 13 से 15 पद। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलिया तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी चाल चलन में निर्दोष रहा। इसके बाद वह उसके पतन का विवरण देता है। यशाया उसके अपराध का कारण बताता है। उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को पूरा करने की लालसा की। ये विद्रोह है, पाप है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में और उसके अधीन रहने में चूक हो। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा और सबसे ऊपर मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। शेक्सपियर के नाटक रचना में नायक राजा क्रोमवेल से कहता है, हे क्रोमवेल, अभिलाषाओं से दूर भाग, क्योंकि इसी पाप के कारण स्वर्ग दूतों का पतन हो गया था, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। देखिए, जब शैतान आदन की वाटिका में आया था तब उसने हव्वा को क्या प्रलोभन दिया था? परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम वो फल खाओ, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन तुम लोग फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम परमेश्वर के तुल्य होना चाहते हो? ये फल खा लो। उसके ठोकर खाने का कारण यही था और यही फंदा उसने हव्वा के लिए लगाया कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। परमेश्वर डरता है कि तुम उस फल को खाते ही उसके बराबर हो जाओगे, इसलिए उसने तुम्हें ये फल खाने से मना किया है। अतः आजकल के वे धर्म जो आपको परमेश्वर के तुल्य बनाकर परमेश्वर के स्थान पर रखते हैं, जब आप मर जाएंगे तो आप और आपकी पत्नी परमेश्वर के सदृश हो जाएंगे। आप अपने किसी छोटे से ग्रह पर होंगे। सावधान, शैतान इसी फंदे में फंसा था और उसने हव्वा को भी इसी फंदे में फंसाया था। वे बातें जो आपको ईश्वर बनाती है। अपने अंतरवासी परमेश्वर को पहचानो। आत्मबोध, ये आत्मबोध का विचार क्या है? मुझे ये बोध होना है कि मैं ईश्वर हूं। कैसा महान विचार है, नहीं? त्रासदी, परंतु अनेक जन हैं जो परमेश्वर बनने की लालसा से ग्रस्त है। अतः जो मुझ में और आप में परमेश्वर है वो आशीष देता है, वो आत्मबोध देता कि मैं कौन हूं। शैतान के पतन का कारण, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर हमारा अपने स्वरूप में पुनरुद्धार कर रहा है। जब परमेश्वर ने आदि में मनुष्य को बनाया था, तब उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। और रोमियो अध्याय 5 पद 12, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। अब यदि मैं ये जानता हूं कि मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर की इच्छा क्या थी, तो मैं संसार को देखकर समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहां अब वो है ही नहीं। मनुष्य भ्रष्ट हो गया। आज जिस मनुष्य को मैं देखता हूं, वो लालच से भरा है, वो घृणा से भरा है, वो धन लोलुप है। मनुष्य अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं में लिप्त है। मनुष्य और मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर की ये इच्छा कभी नहीं थी। हम मनुष्य की पतित अवस्था को देखते हैं, परंतु परमेश्वर वहां भी उसे छूने आया। आज परमेश्वर का आपके जीवन में कार्य करने का उद्देश्य है कि आपका पुनरुद्धार हो, कि आप उसके स्वरूप में आ जाएं जो मनुष्य की सृष्टि के समय था। यही कारण है कि पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 3:18, परंतु जब हम सबके उधाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं परमेश्वर हूं या परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। मैं तो मैं ही रहूंगा, परंतु मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में बदल जाऊंगा। तब लालच और स्वार्थ के स्थान पर प्रेम व्याप्त हो जाएगा और मैं मसीह के स्वरूप में बदल जाऊंगा। आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्यों का यही उद्देश्य है। इस प्रकार शैतान का पतन हुआ। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तूने मन में सोचा, ऊंचा उठेगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाएगा। यशाया अध्याय 14 पद 15-16। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था? जब आप शैतान को नरक में देखेंगे, तब आप कहेंगे, वाह, क्या यही है वो पुरुष जिसने मेरी नाक में दम किया हुआ था? यही है वो पुरुष जिसने पूरे जगत को दुखी कर रखा था, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का आरंभ किया था? क्या यही है वो? जरा देखो, उसे देखो तो, वाह क्या नजारा होगा वो। यशाया अध्याय 14 पद 17 से लेकर 19 तक। जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था, जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाखा की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं की लोथ से घिरा है जो तलवार से बिधकर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। राजाओं को मकबरों कब्र आदि में दफन किया जाता है, परंतु शैतान तो कब्र से भी निकालकर फेंक दिया जाएगा। तू तो युद्ध में मारे गए व्यक्ति के वस्त्र के समान होगा जो लोगों के पैरों के तले रौंदा जाता है। यशाया अध्याय 14 पद 20 से लेकर 22 तक। तू उनके साथ कब्र में ना गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं और जगत में बहुत से नगर बसाए। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबुल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। क्या आपने कभी किसी बाबुल वासी से भेंट की है? वे है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मिटा दिया है। उनका ना नाम है ना ही उनके रिश्तेदार हैं। बाबुल वासी परिवार कोई रहा ही नहीं। यशाया अध्याय 14 पद 23 और 24। मैं उसको साही की मांद और जल की झीले कर दूंगा और मैं उसे सत्यनाश के झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, निस्संदेह जैसे मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। पद 24 बड़ा प्रभावी पद है। परमेश्वर ने कहा कि उसने शपथ खाई है। मनुष्य तो शपथ खाता है कि उसने जो कहा वो सच है, परंतु परमेश्वर ने तो सच के अतिरिक्त और कुछ भी कहा ही नहीं। इसलिए यदि परमेश्वर शपथ खाए तो सच की गहराई क्या होगी? उसका वचन कैसा अटल होगा? उसका कहा कैसी दृढ़ता से स्थापित होगा? परमेश्वर ने शपथ खाई कि जो मैंने कहा वो पूरा होकर ही रहेगा। निस्संदेह परमेश्वर का कहा पूरा होकर ही रहेगा। जब परमेश्वर ने दानियल से लिखने के लिए कहा था, तब उसने कहा, दानियल 2 अध्याय 45 पद, ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है, ये पूरा होकर ही रहेगा। परमेश्वर घोषणा करता है, निश्चय ही जो मैंने कहा है वो पूरा होगा और जैसी मैंने युक्ति की वैसे ही होगी। परमेश्वर के उद्देश्य अटल होते हैं, उनमें परिवर्तन लाया नहीं जा सकता। परमेश्वर की योजना पूरी होकर ही रहती है। यशाया अध्याय 14 पद 25 से लेकर 27 तक। कि मैं अशूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, और ये वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसने हाथ बढ़ाया है, उसे कौन रोक सकता है। वो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यशाया अध्याय 14 पद 28। जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया, उसी वर्ष ये भारी भविष्यवाणी हुई। अब हम विषय में परिवर्तन देखेंगे, जो अध्याय के बदलने से नहीं परंतु इस पद के कारण है। जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया, उसी वर्ष ये भारी भविष्यवाणी हुई। यशाया अध्याय 14 पद 29। हे सारे पलिस्तीन, तू इसलिए आनंद ना कर कि तेरे मारने वाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा, और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। यशाया ने अब बाबुल द्वारा अशूर के विनाश की भविष्यवाणी दी है, परंतु आनंद ना किया जाए कि अशूरों का बाबुल ने नाश किया, क्योंकि परमेश्वर बाबुल को तुम्हारे विरुद्ध उठाएगा। यशाया अध्याय 14 पद 30 से लेकर 32 तक। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक, तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे पलिस्तीन तू सब का सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे ना रहेगा। तब अन्य जातियों के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सियोन की नेव डाली है और ये उसकी प्रजा के दीन लोग उसमें शरण लेंगे। सारांश ये है कि परमेश्वर सियोन को पुनः स्थापित करेगा।